नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि उन्हें एप्पल के एक संदेश भेजकर चेताया कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक कर रही है। कैश फॉर क्वेरी केस में घिरी टीएमसी सांसद ने एक्स पर की एक पोस्ट में दावा किया, जहां महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि एप्पल से मुझे चेतावनी भरा संदेश और ईमेल मिला कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। मुझे सरकार के डर पर दया आ रही है। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि ऐसा संदेश उनके अलावा और भी कई नेताओं को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महुआ मोइत्रा के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, आप के राघव चड्ढा, सीपीआईएम के महासचिव और पूर्व सांसद सीताराम येचुरी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा, द वायर न्यूज वेबसाइट संस्थापक और कांग्रेस नेता शशि थरूर आदि को भी एप्पल से ये सूचना मिली। भाजपा की ओर से निशिकांत दुबे ने विपक्षी नेताओं के आरोप पर कहा कि राहुल गांधी की तरह आरोप लगाकर विपक्षी नेता भाग रहे हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि एप्पल के स्पष्टीकरण का इंतजार किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास मामले में राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने कहा कि नायडू को 4 सप्ताह के लिए जमानत दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए राजा महेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में बंद थे। उन्होंने पहले विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश को पत्र लिखकर जेल परिसर और उसके आसपास पुख्ता सुरक्षा की मांग की थी। नायडू ने 25 अक्टूबर को जेल अधिकारियों के माध्यम से न्यायाधीश को पत्र भेजा था। पत्र में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख ने हाल के दिनों में केंद्रीय जेल के अंदर और उसके आसपास हुई कुछ अप्रिय घटनाओं के बारे में लिखा, जिससे उनके जीवन को खतरा हो सकता था। सपा के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। पत्नी और बेटे समेत 7 साल की सजा मिलने के बाद उन्हें एक और झटका लगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना में दी गई जमीन को वापस लेने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार की मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पे मुहर लग सकती है। सपा सरकार के कार्यकाल में आजम खान के जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 41,181 वर्ग फीट जमीन महज 100 रुपए सालाना किराए पर दी गई थी। आरोप है कि जमीन को देने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। आजम खान के ट्रस्ट को ये जमीन 30 साल के लिए दी गई थी। पहले जमीन पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय था। अब इस जमीन को माध्यमिक शिक्षा परिषद वापस लेने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा अडानी में है। असलियत यह है कि राजा राजा नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। गांधी ने कहा कि जैसे ही हम अडानी पर जाते हैं, वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसी, जासूसी, सीबीआई आते हैं। उन्होंने कहा कि अभी नंबर एक अडानी, नंबर दो प्रधानमंत्री और नंबर तीन अमित शाह हैं। कई विपक्षी नेताओं ने अपने एप्पल उपकरणों की हैकिंग का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मेरे कार्यालय में कई लोगों को ये संदेश मिला। कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया पवन खेड़ा को भी ये संदेश मिला। राहुल गांधी ने ये सब करके बीजेपी युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में लोगों को 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को पानी का संकट झेलना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से बताया गया कि जीतगढ़ यूजीआर की लाइन पर फ्लो मीटर लगाया जाना है। इसकी वजह से चंद्रवल वाटर वर्क्स गुरुवार सुबह 10 से 12 घंटे के लिए बंद रहेगा। बोर्ड ने बताया कि सिविल लाइन्स, हिंदूराव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोलबाग, पहाड़गंज, राजेंद्र नगर, एनडीएमसी क्षेत्र, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंदरपुरी, दक्षिणी दिल्ली व इसके आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार की शाम और शुक्रवार की सुबह जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसे में लोगों से पहले ही पानी स्टोर करके रखने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए कुल 3,832 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर को शुरू हुई और इसकी समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। उन्होंने बताया कि सोमवार तक 3,832 उम्मीदवारों द्वारा दाखिल 4,359 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन 2,489 उम्मीदवारों ने 2,811 नामांकन दाखिल किए। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी और उम्मीदवार 2 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।